रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
एक अर्जुन ने संपूर्ण कौरव सेना को भगा दिया। प्रश्न ये भी होता है कि द्रोणाचार्य भीष्म ये अर्जुन को बहुत चाहते थे, पहचान भी लिए, पहचान कर भी सब हो गया, तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में तो कोई बात नहीं, वो तो एक युद्ध, एक आन मान शान की बात थी, हस्तिनापुर के अस्तित्व की बात थी। वहां द्रोणाचार्य कृपाचार्य और भीष्म युद्ध करें तो कोई बात नहीं, यहां उन्होंने युद्ध क्यों किया? वो तो युद्ध निश्चित था, ये यहां अपनी तरफ से कौरवों ने चढ़ाई की, गायें ले गए उस युद्ध में, और इसमें तो फर्क है, यहां तो इनको शामिल नहीं होना चाहिए। दुर्योधन को कह देना चाहिए कि भाई हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। द्रोणाचार्य क्यों लड़े और भीष्म पितामह क्यों लड़े, कर्ण वगैरह तो ऐसे ही थे। तो द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य के शस्त्र ज्ञान की परीक्षा के लिए और इंद्रादि के द्वारा मिले हुए शस्त्रों का अभ्यास कराने के लिए भीष्म ने और कृपाचार्य ने और द्रोणाचार्य तीन ने इस भावना से युद्ध किया था। अर्जुन को मार दें ये उनके मन में भावना नहीं थी, कर्ण के तो थी, पहली बात। दूसरी बात है, अर्जुन को ये बता दिया कि देख अर्जुन, आने वाला युद्ध होगा, ऐसे ऐसे शस्त्र चलेंगे, तो तुमको और कुछ करना है, और कुछ प्राप्त करना है तो तुम सीख लो, चाहे कर्ण से युद्ध करना पड़े, चाहे हम में से युद्ध करना पड़े। अर्जुन को सिखाने के लिए था ये। तीन की तरफ से जो हुआ, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, तीन ही आदमी इनमें श्रेष्ठ थे। चलो जो भी हो, जीत गए विराट, और अर्जुन ने कह दिया कि राजकुमार अब तुम घोड़ों को लेकर लौटो, तुम्हारी गवे हमने जीत ली है, शत्रु भाग गए, अब नगर में चलते हैं। देवता लोग भी इस युद्ध को देख रहे थे कि मैंने अर्जुन को ये शस्त्र दिया है, मैंने ये दिया है, जैसे कैसे काम किया, तो सब देवता प्रसन्न होकर अपने लोक में चले गए। बाद की कथा है। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, इस प्रकार उत्तम दृष्टि रखने वाला अर्जुन संग्राम में कौरवों को जीतकर विराट का वह महान गोधन लौटाकर ले आ गया। जब धृतराष्ट्र के पुत्र इधर उधर सब दिशाओं में भाग गए, उसी समय बहुत से कौरवों के सैनिक जो घने जंगल में छिपे हुए थे निकलकर डरते 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 अर्जुन के पास आए। वे बड़े भूखे प्यासे थके मंदे थे, परदेश में होने के कारण उनकी विकलता और भी बढ़ गई। उन्होंने अर्जुन को प्रणाम करते हुए कहा, हे कुंती नंदन, हम लोग भीतर से आपको चाहते हैं। हम लोग आपकी किस आज्ञा का पालन करें, हमारे लिए क्या आज्ञा है? अब ऊपर से अब दुर्योधन की बात माननी पड़ती है, लेकिन हम सब सैनिक हृदय से पांडवों का हित चाहते हैं, विजय चाहते हैं। बड़ा अच्छा हुआ दुर्योधन का आज अभिमान नष्ट हो गया। अर्जुन ने कहा, हे सैनिकों, आप लोगों का कल्याण हो, मेरे से किसी प्रकार भय मत मानना, अपने देश में लौट जाओ। तुम अभी बहुत भूखे प्यासे थके मंदे हो, मैं अपने नगर की तरफ जा रहा था, आप बीच में मिल आए, अब मैं आपको किसी प्रकार मारूंगा नहीं। संकट में पड़े हुए को मारना उचित नहीं है। इस बात के लिए मैं तुम्हें पूरा भरोसा दिलाता हूं, हमारे विराट में से कोई भी किसी प्रकार आप पर आक्रमण नहीं करेगा। वह अभयदान युक्त वाणी सुनकर वहां आए हुए सभी योद्धाओं ने अर्जुन को आयु, कीर्ति और यश देने वाले आशीर्वाद दिए, अर्जुन को बहुत प्रसन्न किया। उसके बाद अर्जुन ने उत्तर को हृदय से लगाकर कहा, उत्तर, यह तो तुम्हें मालूम ही हो गया कि तुम्हारे पिता के पास पांडव ही निवास करते हैं, परंतु अपने नगर में प्रवेश करके तुम पांडवों की प्रशंसा मत करना। उत्तर ने कहा, क्यों? नहीं, तुम्हारे पिता हमारे भय से डरकर प्राण त्याग देंगे। उत्तर फिर बोला, हे सभ्यसाचिन, जब तक आप इस बात को प्रकाशित करने के लिए स्वयं मुझसे नहीं कहेंगे, तब तक पिता के निकट आपके विषय में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। यदि मेरे पिता प्राण त्याग दें, ऐसा काम मैं नहीं करूंगा। तदनंतर अर्जुन पुनः उसी श्मशान भूमि में आया और उसी शमी वृक्ष के पास आकर खड़ा हुआ। उसी समय उसके रथ की ध्वजा पर बैठा हुआ अग्नि के समान तेजस्वी विशालकाय बानर भूतों के साथ आकाश में उड़ गया। इसी प्रकार जो माया थी वो भी विलीन हो गई। फिर रथ पर सिंह के चिन्ह वाली राजा विराट की ध्वजा चढ़ा दी गई और अर्जुन के सब शस्त्र, गांडीव धनुष तथा तरकस पुनः समी वृक्ष में उन्हीं कपड़ों में बांधकर उसी प्रकार लटका दिए गए और महात्मा अर्जुन सारथी बनकर रथ के आगे बैठ गया। उत्तर रथी बनकर आनंद पूर्वक नगर की ओर चला। अर्जुन ने अपनी वैसी ही चोटी गूंथ कर वैसा ही रूप बना लिया जिस रूप से वो रवाना हुआ था और बृहन्नला के वेश में होकर घोड़ों की बागडोर संभाल ली। इधर उत्तर को कहा, उत्तर, तुम अपने धनुष और बाण को एक विजेता योद्धा के समान इस प्रकार धारण करो, ऐसे बैठो और उल्लास के साथ चलो। देखो राजकुमार, अब इन ग्वालों को आज्ञा दो कि वे शीघ्र जाकर प्रिय समाचार सुनाएं और यह कहें कि उत्तर ने विजय प्राप्त कर ली है। अर्जुन की बात मानकर उत्तर ने तुरंत दूतों को आज्ञा दी, तुम लोग नगर में जाकर खबर दो कि शत्रु हार गए हैं, अपनी विजय हो गई है और गौवे वापिस जीत कर ले आई गई है। जन्मेजय सेनापति राजा विराट ने भी दक्षिण दिशा से गौवों को जीतकर चारों पांडवों को साथ लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ नगर में प्रवेश किया। उसने संग्राम में त्रिगर्तों पर विजय प्राप्त की थी। जिस समय अपनी सब गौवों के साथ लेकर पांडवों सहित वो पदार्पण किया और उसी समय वह सिंहासन के ऊपर जाकर विराजमान हो गया। सब लोगों को वो बताने लगे कि देखो आज हमने कैसे विजय प्राप्त की है, परसों जो विजय की थी वो। सब लोग पांडवों के साथ मिलकर राजा की सेवा करने लगे। उसके बाद अभी तक पांडवों ने खोला नहीं है। इसके बाद विराट ने पूछा, अरे भाई दूतों कुमार उत्तर का क्या समाचार है? इसके उत्तर में रनिवास में रहने वाली स्त्रियों और कन्याओं ने निवेदन किया कि महाराज आपके युद्ध में चले जाने पर कौरव लोग यहां आए और गवों को हर कर ले गए। तब कुमार उत्तर क्रोध में भरकर गया और अत्यंत साहस के कारण अकेले ही उन्हें जीतने के लिए चल दिया। सारथी, हां शैलेंद्री ने कहा था कि सारथी के रूप में बृहन्नला उचित लगेगा। कौरवों की सेना में भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा, ये छह महारथी आए थे। विराट ने जब सुना कि मेरा पुत्र अकेले बृहन्नला को सारथी बनाकर केवल एक रथ साथ में ले कौरवों से युद्ध करने गया है, बड़ा दुख हुआ, हृदय भर आया। शोक के मारे उन्होंने प्रधानमंत्रियों से कहा, मेरे जो योद्धा त्रिगर्तों के साथ युद्ध में घायल न हुए हों, वे बहुत सी सेना के साथ उत्तर की रक्षा के लिए जल्दी जाएं। मुझे बड़ी चिंता हो रही है, इन महारथियों के बीच में उत्तर कैसे युद्ध करेगा। सेना को जाने की आज्ञा देकर उसने पुनः मंत्रियों से कहा, सबसे पहले मेरे पास ये खबर आनी चाहिए कि राजकुमार उत्तर जीवित भी है या नहीं है। बड़े दुख की बात है, जिसका सारथी एक हिंजड़ा है, उसके अब तक जीवित रहने की मुझे कोई संभावना नहीं दिखती है। राजा विराट को दुखी देखकर महाराज युधिष्ठिर ने हंस करके कहा, वाह राजन, क्यों आप व्यर्थ में चिंता करते हैं? यदि बृहन्नला सारथी है तो आप मेरे पर विश्वास कीजिए, आपका पुत्र समस्त राजाओं, कौरवों, देवता, असुर, सिद्ध, यक्षों को सबको युद्ध में जीत सकता है। युधिष्ठिर का ये वाक्य अभी समाप्त हुआ ही नहीं था, इतने में उत्तर के भेजे हुए दूत विराट नगर में पहुंचे और उन्होंने उत्तर कुमार के विजय का समाचार सुनाया। उसे सुनकर मंत्री ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज बड़ी प्रसन्नता का समाचार लेकर आए हैं, उत्तर ने सब गवों को जीत लिया, कौरव हार गए, मैदान छोड़कर भाग गए और कुमार अपने सारथी के साथ कुशल पूर्वक यहां आ रहे हैं। युधिष्ठिर जी महाराज फिर मुस्कुरा करके बोले, देखो राजन बड़े सौभाग्य की बात है, गौवें जीतकर वापस लाई गई और कौरव हार कर भाग गए। आपको शायद इस विषय में आश्चर्य हो सकता है, मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जिसका सारथी बृहन्नला हो उसके विजय में कोई संदेह है? पुत्र की विजय का समाचार सुनकर राजा विराट के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा, उनके शरीर में रोमांच हो गया, जो शोक था वो आनंद में बदल गया। दूतों को खूब इनाम दिया, मंत्रियों को आज्ञा दी, सड़कों के किनारे विजय पताका फहराओ, फूलों तथा नाना प्रकार की सामग्रियों से देवताओं की पूजा करो, सब कुमार और प्रधान प्रधान योद्धा गाजे बाजे के साथ मेरे पुत्र की अगवानी में जाएं, तथा एक आदमी हाथी पर बैठकर घंटा बजाते हुए सारे नगर में मेरे विजय की समाचार सुनाएं। राजा की इस आज्ञा को सुनकर समस्त नगर निवासी, सौभाग्यवती तरुणी स्त्रियां और सूत मागध आदि मांगलिक वस्तुएं हाथ में ले गाजे बाजे के साथ विराट कुमार उत्तर को लेने के लिए आगे आए। इन सब को भेजने के पश्चात राजा विराट बड़े प्रसन्न होकर बोले, शैलेन्द्री जा पासेला, कंकजी चलो अब जुआ प्रारंभ करें। यह सुनकर युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज मैंने सुना है अत्यंत हर्ष में भरे हुए चालाक खिलाड़ी के साथ जुआ नहीं खेलना चाहिए। आज भी आप बहुत आनंद मग्न हो रहे हैं, अतः आपके साथ खेलने का साहस नहीं होता है। भला आप जुआ क्यों खेलते हैं? इसमें तो बहुत दोष है, जहां तक संभव हो इसका त्याग कर देना उचित है। महाराज आपने युधिष्ठिर को देखा होगा अथवा उनका नाम तो सुना ही होगा, कितना विशाल साम्राज्य, परंतु जुए के अंदर भाइयों सहित हार खा करके राज्य को खो दिए। मैंने युधिष्ठिर से शिक्षा ली है कि जुआ को कभी पसंद मत करो, ये महान दुर्व्यसन है, पतन करने वाला है। तो भी यदि आपकी विशेष इच्छा हो तो खेल लो। जुए का खेल प्रारंभ हुआ। खेलते खेलते विराट ने कहा, कंक आज मेरे बेटे ने उन प्रसिद्ध कौरवों पर विजय पाई है, आज मेरे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं, मेरा वंश आज उज्जवल हो गया। मेरे पितर मुझे कितना धन्यवाद देते होंगे, इस धरती पर पांडु कौरवों के अलावा कौन इतने श्रेष्ठ पुरुषार्थी योद्धा होंगे, उनको मेरे एक छोटे से बेटे ने मुंह छिपाकर भगवा दिया। देखो कंक, आज से बड़ा कभी मुझे जीवन में गौरव का दिन नहीं मिला। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, बृहन्नला जिसका सारथी हो वह भला युद्ध में क्यों नहीं जीतेगा? यह उत्तर सुनते ही राजा कोप में भरकर बोले, ये अधम ब्राह्मण, जब भी मेरे बेटे की प्रशंसा की बात आती है उस समय तुम हिंजड़े के साथ उसकी तुलना करते हो और उस विजय का श्रेय हिंजड़े को देना चाहते हो। मित्र तुम मेरे मित्र हो, इस कारण मैं तेरे अपराध को क्षमा करता हूं, किंतु यदि जीवित रहना चाहता है तो फिर कभी ऐसी बात मत बोलना, ये मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। मैं कितनी देर से बोलता आ रहा हूं, तुम एक ही रट लगा रखे हो, जिसका सारथी बृहन्नला है, जिसका सारथी बृहन्नला है। युद्ध बृहन्नला कर रहा था, युद्ध तो उत्तर करता है, बृहन्नला क्या करेगा? राजा युधिष्ठिर ने फिर नम्रता से कहा, महाराज जहां द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य और दुर्योधन आदि महारथी युद्ध करने को आए हों, वहां बृहन्नला के सिवा दूसरा कौन है जो उनका मुकाबला कर सके, जिसके समान किसी मनुष्य का बाहुबल न हुआ है न आगे होने वाला है, जो देवता, असुर और मनुष्यों पर भी विजय पा चुका है, ऐसे वीर को सहायक पाकर उत्तर क्यों नहीं विजय होगा? ये बात सत्य है और मैं सत्य की ही तो बात बोल रहा हूं। विराट ने कहा, अनेकों बार मना किया किंतु तेरी जमान बंद नहीं हुई। सच है, यदि कोई दंड देने वाला न रहे तो मनुष्य धर्म का आचरण कर ही नहीं सकता है। ये कहते कहते राजा विराट कोप से अधीर हो गया और पासा उठाकर उसने युधिष्ठिर के मुंह पर दे मारा और फिर डांटते हुए कहा, अब कभी ऐसी बात मत बोलना। पासे बहुत जोर से युधिष्ठिर के नाक पर लगे, होठ पर लगे। उसकी बूंद पृथ्वी पर पड़ने से पहले ही युधिष्ठिर ने अपने दोनों हाथों से उसे रोक लिया और पास में खड़ी हुई द्रौपदी की ओर देखा। द्रौपदी अपने पति का अभिप्राय समझ गई। वह जल से भरा हुआ एक सोने का कटोरा ले आई और उसमें वह रक्त उसने ले लिया, जमीन पर नहीं पड़ने दिया। तदनंतर राजकुमार उत्तर ने नगर में बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रवेश किया। इधर बड़ा आनंद मनाया जा रहा है। विराट के स्त्री पुरुष आसपास के प्रांत के लोग उसकी अगवानी में खड़े हैं। जय जयकार हो रहा है, स्वागत सत्कार हो रहा है। राजभवन तक अपार भीड़ है और लोगों ने जाकर समाचार दिया है। द्वारपाल ने दरबार में जाकर विराट से कहा, महाराज वीरेन्नला के साथ राजकुमार उत्तर ड्यूटी पर खड़े हैं। इस शुभ संवाद से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने द्वारपालों से कहा, दोनों को शीघ्र भीतर ले लाओ, मैं उनसे मिलने को उत्सुक हूं। इसी समय युधिष्ठिर ने द्वारपाल के कान में धीरे से जाकर कहा, पहले सिर्फ उत्तर को ही यहां लाना, बृहन्नला को नहीं, क्योंकि उसने यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो संग्राम के सिवा कहीं अन्यत्र मेरे यानी युधिष्ठिर के शरीर में घाव कर देगा या रक्त निकाल देगा, मैं उसका प्राण ले लूंगा। मेरे वदन में रक्त देखकर वह क्रोध में भर जाएगा और उस दशा में यह वह विराट को उनकी सेना सवारी मंत्रियों सहित मार डालेगा, इसलिए उत्तर को ही लाना, बृहन्नला को नहीं लाना। तत्पश्चात उत्तर ने सभा भवन में प्रवेश किया, पर उत्तर के चेहरे पर इतना विजय का उल्लास नहीं था। आया, पिता के चरणों में सिर झुकाया और फिर कंक को देखा। उत्तर तो जानता था कि युधिष्ठिर है, उन्होंने उनको प्रणाम किया। उसने देखा कि कंक जी की नासिका से रक्त बह रहा है और वे एकांत में भूमि पर बैठे हुए हैं, साथ ही शैलेन्द्री उनकी सेवा में उपस्थित है। तब उसने बड़ी उतावली के साथ अपने पिता से पूछा, राजन एक कंक को किसने मारा? कौन ऐसा धरती पर पापी पैदा हुआ जिसने इतना बड़ा पाप किया? विराट ने कहा, कुमार ऐसे कैसे बोलते हो? इन्हें तो मैंने ही मारा है। ये बड़ा कुटिल है, इसका जितना आदर किया गया उतने योग्य है नहीं। देखो, जब तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा की जाती है उस समय यह उस हिंजड़े की तारीफ करता है, बार बार कहता है कि जिसके सारथी बृहन्नला है वो उत्तर क्यों नहीं विजय होगा। इसका मतलब तुमने कुछ नहीं किया, बृहन्नला ने सब कुछ किया, हिंजड़े ने किया। बार बार उसने ये बात कही तब मैंने इसको मारा है। उत्तर बोला, महाराज आपने बहुत बुरा काम किया है, इन्हें जल्दी प्रसन्न कीजिए, नहीं तो ब्राह्मण का क्रोध आपको समूल नष्ट कर देगा। अर्जुन ने पहले ही कह दिया था कि प्रकट मत करना, इसलिए ब्राह्मण कहकर ही कहा है। विराट ने कहा, पुत्र इतनी बड़ी विजय प्राप्त किए हो, इतने इतने पृथ्वी के महारथियों को तुमने युद्ध से लौटवा दिया है, भगा दिया है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर जो एक विजय सूचक तेज होना चाहिए वो नहीं है। क्या बात है? उत्तर ने कहा, पिताजी पहले इस ब्राह्मण को प्रसन्न करो। बेटे की बात सुनकर राजा विराट कुंती नंदन युधिष्ठिर के पास आए और क्षमा याचना की। राजा को क्षमा मांगते थे कि युधिष्ठिर बोले, राजन इसी क्षमा का व्रत मैंने चिरकाल से कर रखा है। राजन मुझे कभी क्रोध आता ही नहीं है। मेरे नाक से निकला हुआ ये रक्त यदि पृथ्वी पर गिर पड़ता तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य के साथ तुम्हारा सर्वनाश हो जाता, इसलिए रक्त को मैंने गिरने नहीं दिया। जब युधिष्ठिर का लोहू निकलना बंद हो गया तब बृहदलला ने भी भीतर पहुंचकर राजा विराट और कंक को प्रणाम किया। विराट ने अर्जुन के सामने ही उत्तर की प्रशंसा शुरू की। हे केकई नंदन, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर वास्तव में मैं पुत्रवान हुआ हूं। आप लोग देखेंगे केकई नंदन कैसे कहा है, आगे शायद इसका खुलासा कर देंगे। हे केकई नंदन, तुम्हें पाकर आज मैं वास्तव में पुत्रवान हो गया हूं। तुम्हारे जैसा पुत्र न तो मेरे हुआ और न होने की संभावना है। बेटा जो एक साथ 1000 निशाना मारने में भी कभी नहीं चूकता, उस कर्ण के साथ इस जगत में जिनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है, उन भीष्म जी के साथ तथा कौरवों के आचार्य द्रोण अश्वत्थामा और योद्धाओं को कंपा देने वाले कृपाचार्य के साथ तुमने कैसे मुकाबला किया, तथा दुर्योधन के साथ भी तुम्हारा किस प्रकार युद्ध हुआ, मैं ये सब घटना सुनना चाहता हूं। पर उत्तर में बात ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे मुखमंडल पर विजय का उल्लास नहीं दिखता है, इसका कारण क्या है? हम बड़े प्रसन्न हैं विजयी तुम्हारे विजय से, लेकिन तुम इतने प्रसन्न दिखाई नहीं देते। उत्तर ने कहा, महाराज ये मेरी विजय है ही नहीं। तुम्हारी विजय नहीं है? हां महाराज, यह सब एक देव कुमार ने किया है। मैं तो डरकर भाग रहा था, किंतु उस देव पुत्र ने मुझे लौटाया, डांटा डपटा, शिक्षा दी, छात्र धर्म बताया और मुझे रथ पर बैठा कर मेरे से रथ हंकवाया, और उसी ने रथ पर बैठकर गवों को जीता और कौरवों को हराया। उसी ने कृपाचार्य को हराया, द्रोणाचार्य भीष्म अश्वत्थामा कर्ण और दुर्योधन 6 महारथियों को बाण मार मार कर रणभूमि से भगाया। उसी ने उनकी सारी सेना को हराकर हंसते हंसते उनके वस्त्र भी छीन लिए। विराट बोले, पुत्र क्या सुन रहा हूं, कोई देवपुत्र आया? कहां है वो? मैं उसे देखना चाहता हूं। इतनी तुम्हारी कीर्ति करने वाला देवपुत्र कहां है? उत्तर ने कहा, वह तो वही अंतर्धान हो गया, कल परसों तक यहां आ सकता है। उसने कहा मैं 1-2 दिन में आऊंगा तो यहां प्रकट हो सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ये सब संकेत तो अर्जुन के विषय में था ना, पर नपुंसक के वेश में छिपे होने के कारण विराट उसे पहचान नहीं सके थे। उनकी आज्ञा से बृहन्नला ने वे सब कपड़े जो युद्ध से लाए थे राजकुमारी उत्तरा को दिए। वह बहुमूल्य एवं रंग बिरंगे वस्त्रों को पाकर उत्तरा बड़ी प्रसन्न हुई। उसके बाद अर्जुन ने राजा युधिष्ठिर के प्रकट होने के विषय में उत्तर से सलाह करके उसके अनुसार कार्य किया। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर इसके तीसरे दिन पांचों महारथी पांडवों ने स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण किए और राजोचित आभूषणों से विभूषित हो युधिष्ठिर को आगे करके सभा भवन में प्रवेश किया। सभा में पहुंचकर वे राजाओं के योग्य आसन पर विराजमान हो गए। इसके बाद राजकार्य देखने के लिए स्वयं राजा विराट सभा में पधारे। अग्नि के समान तेजस्वी पांडवों को राजा सन बैठे देख राजा को बड़ा क्रोध हुआ। फिर थोड़ी देर तक मनी मन विचार करके उसने कंक से कहा, ये तुम्हारे बैठने की जगह है? तुम तो पासा खेलने वाले हो। सभा में पासा पिछा बिछाने के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया था, आज इस प्रकार बन ठन कर सिंहासन पर कैसे बैठे हो? इतनी मर्यादा खोते हो तुम। राजा ने यह वाक्य जाने किस भाव से कहा होगा। उसे सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज तुम्हारे सिंहासन की बात तो क्या है, ये तो इंद्र के भी आधे सिंहासन पर बैठने के अधिकारी है। ये ब्राह्मणों के रक्षक, शास्त्रों के विद्वान, विषयों के त्यागी, यज्ञों के कर्ता और दृढ़ता के साथ अपने व्रत का पालन करने वाले हैं। आप इन्हें पहचान नहीं पाए, ये मूर्तिमान धर्म है, पराक्रमी पुरुषों में श्रेष्ठ है, इस जगत में सबसे अधिक बुद्धिमान और तपस्या के आश्रय है, जिन अस्त्रों को देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, सर्प, बड़े बड़े नाग भी नहीं जानते, उन सबका इनको ज्ञान है। ये दीर्घदर्शी, महातेजस्वी और अपने देशवासियों के प्रेम पात्र हैं। ये महर्षियों के समान हैं, राजर्षि हैं, समस्त लोकों में विख्यात हैं। महारथी बलवान, धर्मपरायण, धीर, चतुर, सत्यवादी, जितेंद्रिय हैं। ऐश्वर्य और धन में ये इंद्र और कुबेर के समान हैं। आपने शायद नाम सुना होगा, ये वो है जिन्हें धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से कहा जाता है। ये कौरवों में सर्वश्रेष्ठ, उदयकालीन सूर्य की शांत प्रभा के समान इनकी सुखदायिनी कीर्ति समस्त संसार में फैली हुई है। ये धर्मराज जब कुरुदेश में रहते थे उस समय इनके पीछे 10,000 वेगवान हाथी और अच्छे घोड़ों से जुते हुए स्वर्णमाला मंडित 30,000 रथ चलते थे। जैसे देवता कुबेर की उपासना करते हैं, वैसे ही सब राजा और कौरव लोग इनकी उपासना किया करते थे। इन्होंने इस देश के सब राजाओं को देश के सब राजाओं से कर लिया था। इनके यहां प्रतिदिन 88,000 स्नातक ब्राह्मणों की जीविका चलती थी। ये बूढ़े, अनाथ, लंगड़े, लूले, अंधे मनुष्यों की रक्षा करते थे। प्रजा को तो ये सदा पुत्र के समान मानते थे। इनके सद्गुणों को कहां तक कहा जाए, ये नित्य धर्मपरायण एवं दयालु हैं। राजन, ऐसे उत्तम गुणों से युक्त होकर भी ये आपके राजासन पर बैठने के अधिकारी क्यों नहीं है? विराट ने कहा, तुम जितनी प्रशंसा कर रहे हो मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। और सुनाओ, यदि ये युधिष्ठिर है तो इनका भाई अर्जुन कहां है? महाबली भीमसेन कहां है? नकुल और सहदेव कहां है? और परम यशस्विनी, तेजस्विनी वो द्रौपदी कौन है? जब से पांडव लोग जुए में हार गए तब से इनका कोई अता पता नहीं है। अर्जुन ने कहा, राजन अब हम आपसे क्या छिपाएं?
ये जो बल्लव नामधारी आपके रसोईया है ये ही भयंकर वेग और पराक्रम वाले भीमसेन है।
ये भीमसेन है? हाँ महाराज, ये भीमसेन है। कीचक को मारने वाले गंधर्व भी यही है। विराट यूं देखता है, आप भीमसेन हैं?
भीमसेन ने कहा, भीमसेन।
नकुल, ये घोड़ों का प्रबंध करने वाला नकुल है और गौओं को संभाल रखने वाला है,
ये हम में सबसे छोटा सहदेव है। ये दोनों महारथी मेरी मां माद्री के पुत्र हैं और हमारी मां कुंती ने इन दोनों की साल संभाल के लिए हमें विशेष रूप से कहा है। और ये जो हमारे साथ खड़ी सुंदरी है, जो आपके यहां शैलेंद्री के रूप में रही है, ये द्रौपदी है। इसके लिए ही कीचक का विनाश किया गया।
विराट ने कहा, एक नाम छूट रहा है जिसको मैं सुनना चाहता था, वो अर्जुन कहां है?
बड़ी नम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, अर्जुन मैं हूं। अवश्य ही आपके कानों में कभी मेरा नाम पड़ा होगा।
सुनते ही विराट की आंखों से आंसू आने लगे। आप अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, उत्तर बीच में खड़ा होकर कहने लगा, पिताजी हमने जिस देव पुत्र की बात कही थी वो ये ही है। अब जो अर्जुन का पराक्रम बताया, पिताजी यही युद्ध में गौओं को जीत कर लाए, इन्होंने कौरवों को हराया, इनकी शंख की ध्वनि तो मेरे कान की शक्ति से बाहर थी, मुझे बहरा कर दिया।
विराट ने कहा, उत्तर मैं पांडवों को बहुत चाहता था, आज मेरा सौभाग्य देखो, हमें पांडवों को यहां दर्शन करने का, इस रूप में दर्शन करने का मौका मिला। आश्चर्य भी होता है और भगवान की कृपा भी मानते हैं, हमारे यहां रहे हम पहचाने नहीं।
उत्तर मेरी राय तो यह है कि मैं अर्जुन से तुम्हारी बहन उत्तरा का विवाह करूं ताकि इस परिवार के साथ मेरा गहरा संबंध हो जाए।
उत्तर बोला, कितना पवित्र विचार आपका हुआ है। पांडवों के समान संसार में कौन श्रेष्ठ पूजनीय और सम्माननीय हो सकते हैं?
यह एक हमको चलते फिरते मौका मिल गया, इसलिए आप इनका अवश्य सत्कार करो और मेरी बहन उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ करो।
विराट ने कहा, युद्ध में मैं शत्रुओं के फंदे में फंस गया था, उस समय भीमसेन ने मुझे छुड़ाया और गौओं को भी जीता। मैंने अनजान में युधिष्ठिर को जो कुछ अनुचित वचन कहे उसके लिए मैं धर्मात्मा पांडुनंदन युधिष्ठिर से बार बार क्षमा याचना करता हूं।
आपसे जितनी बार क्षमा याचना करूं उतना ही कम लगता है।
इस प्रकार क्षमा याचना करके राजा विराट को बड़ा संतोष हुआ और उसने पुत्र के साथ सलाह करके अपना सारा राज पाट और खजाना युधिष्ठिर की सेवा में समर्पित कर दिया। फिर पांडवों और विशेषतः अर्जुन के दर्शन से अपने सौभाग्य की सराहना की। अर्जुन, तुम्हें पाकर तुम्हें बहुत खुश हुआ हूं। अर्जुन का उन्होंने जाकर छाती से लगाकर उसका मस्तक सूंघा, गले लगाया। उसके बाद अतृप्त नेत्रों से विराट एक टक अर्जुन को देखने लगे और फिर वे युधिष्ठिर से बोले, बड़े सौभाग्य की बात है, आप लोग कुशल पूर्वक वन से लौट आए हैं, और यह भी अच्छा हुआ कि इस कष्टदायक अज्ञातवास की अवधि आपने पूरी कर ली। मेरा सर्वस्व आपका है, इसे निसंकोच स्वीकार करें। अर्जुन मेरी पुत्री का उत्तरा का पाणि ग्रहण स्वीकार करे, ये सर्वथा उसके योग्य होने योग्य है। विराट ने ऐसा कहकर विराम लिया और युधिष्ठिर ने अर्जुन की ओर देखा। तब अर्जुन ने मत्स्यराज को इस प्रकार उत्तर दिया, राजन, मैं आपकी कन्या को अपनी पुत्रवधु के रूप में स्वीकार करता हूं, मेरी पत्नी में स्वीकार नहीं करता। मत्स्य और भरतवंश का ये संबंध बड़ा उचित है। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन की बात सुनकर राजा विराट ने कहा कि हे पांडव श्रेष्ठ अर्जुन, मैं स्वयं तुम्हें अपनी कन्या दे रहा हूं, फिर तुम इसे अपनी पत्नी के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते? अर्जुन ने कहा, राजन, मैं बहुत काल तक आपके रनिवास में रहा हूं और आपकी कन्या को एकांत में तथा सबके सामने पुत्री भाव से देखता आया हूं। उसने भी मुझ पर पिता के भांति विश्वास किया है। मैं नाचता था और संगीत का जानकार भी हूं, इसलिए वह मुझसे प्रेम तो बहुत करती है, परंतु सदा मुझे गुरु ही मानती आई है। वह वयस्क हो गई है और इसके साथ एक वर्ष तक मुझे रहना पड़ा है, इस कारण तुम्हें या और किसी को हम पर कोई अनुचित संदेह नहीं करना चाहिए, इसलिए उसे मैं अपनी पुत्रवधु के रूप में वरण करता हूं। ऐसा करके मैं शुद्ध जितेंद्री तथा मन को वश में करने वाला भी हो सकूंगा और इससे आपकी कन्या का चरित्र भी शुद्ध समझा जाएगा। यदि आप मेरे साथ विवाह करते तो आपकी कन्या का और मेरा चरित्र लोगों की दृष्टि में संदिग्ध हो जाता। मैं निंदा और मिथ्या कलंक से डरता हूं, क्योंकि इसका प्रभाव समाज पर बहुत बुरा पड़ता है, इसलिए उत्तरा को पुत्रवधु के रूप में ही ग्रहण करूंगा। मेरा पुत्र भी देवकुमार के समान है, भगवान श्री कृष्ण का भांजा है, वे उस पर बहुत प्रेम रखते हैं, उसका नाम अभिमन्यु है, वह सब प्रकार की अस्त्र विद्या में निपुण है और तुम्हारी कन्या का पति होने का सर्व पति होने के सर्वथा योग्य है। विराट ने कहा, हे पार्थ, क्या तुम्हारी ऊंची विचारधारा है? समाज के अंदर किसी प्रकार का अधर्म न फैले, कितना गहरा विचार किया है, क्योंकि तुम्हारी मां कुंती है, तुम्हारे बड़े भाई युधिष्ठिर है, भीमसेन है, तुम सदा धर्म में तत्पर रहने वाले और ज्ञानी हो। अब इसके बाद का जो कुछ कर्तव्य है उसे पूर्ण करो। जब अर्जुन मेरा संबंधी हो रहा है तो मेरी कौन सी कामना बाकी रह गई? यदि अर्जुन आप मेरी पुत्र को स्वीकार न कर अपने पुत्र के लिए बोलते हैं, तब भी मैं आपका संबंधी तो हो ही गया ना, मैं इतने भी बड़ा खुश हूं। विराट के ऐसा कहने पर अवसर पाकर राजा युधिष्ठिर ने इन दोनों की बातों का अनुमोदन किया और फिर विराट और अर्जुन ने अपने अपने मित्रों के यहां तथा भगवान के पास दूत भेजा। अब 13वां वर्ष भी बीत चुका था, इसलिए पांडव विराट के उपप्लव्य नामक स्थान पर जाकर रहने लगे। अभिमन्यु, श्री कृष्ण तथा अन्यान्य दाशार्य वंशियों को बुलाया गया। काशीराज और शैव्य एक एक अक्षौहिणी सेना लेकर युधिष्ठिर के यहां प्रसन्नता पूर्वक पधारे। राजा द्रुपद भी एक अक्षौहिणी सेना के साथ आए, उनके साथ शिखंडी और धृष्टद्युम्न भी थे। इनके सिवा और भी बहुत से नरेश अक्षौहिणी सेना के साथ वहां पधारे। राजा विराट ने यथोचित सत्कार किया और सबको उत्तम स्थानों पर ठहराया। भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, कृतवर्मा, सात्यकी, अक्रूर और सांबादी, क्षत्रिय, अभिमन्यु और सुभद्रा को साथ लेकर आए, जिन्होंने द्वारिका में एक वर्ष तक वास किया था। वे इंद्रसेन आदि सारथी भी रथों सहित वहां आ गए। भगवान श्री कृष्ण के साथ 10,000 हाथी, 10,000 घोड़े, 1 अरब रथ और एक निखर्व, निखर्व माने 10 खरब पैदल सेना थी। वृष्णि, अंधक और भोजवंश के बलवान राजकुमार थे। श्री कृष्ण ने निमंत्रण में बहुत सी दासियां, नाना प्रकार के रत्न और बहुत से वस्त्र लाकर युधिष्ठिर को भेंट किए। राजा विराट के घर शंख, भेरी और गोमुख आदि की भांति भांति आवाजें होने लगी। अंतपुर की सुंदरी स्त्रियां नाना प्रकार के आभूषण वस्त्रों से सुसज्जित होकर कानों में मणिमय कुंडल पहने रानी सुदिष्णा के पास आए और वहीं द्रौपदी भी चली आई। इसी महल में यही द्रौपदी शैलेंद्री का काम करती थी और हमने इसको दासी के समान समझा। सुदेशना ने द्रौपदी को अपने छाती से लगाया और फूट फूट के रोने लगी। द्रौपदी ने कहा, सुदेशना जी, आपने तो हमको आश्रय दिया। संकट के समय जो साथ देता है वही अपना होता है। हम तो अपना समझ करके यहां रह रहे थे, आप इतने क्यों व्यथित होते हैं? और अभी तो विवाह का मौका है, खूब आनंद से विवाह कीजिए। सुदेशना का प्रेम रुका नहीं, बार बार द्रौपदी को छाती से लगा लगा कर कहती है, द्रौपदी मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। फिर उत्तरा का श्रृंगार करने लग गए। द्रौपदी के पास पहुंचकर उसके रूप, संपत्ति और शोभा के सामने सब फीके पड़े हुए थे। अर्जुन ने सुभद्रा नंदन अभिमन्यु के लिए सुंदरी विराट कुमारी को स्वीकार किया। उस समय वहां इंद्र के समान वेशभूषा धारण किए हुए राजा युधिष्ठिर भी खड़े थे। उन्होंने भी उत्तरा को पुत्रवधू के रूप में अंगीकार किया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के सामने अभिमन्यु और उत्तरा का खूब आनंद के साथ विवाह हुआ। विवाह काल में विराट ने प्रज्वलित अग्नि में विधिवत हवन करके ब्राह्मणों का सत्कार किया और दहेज में वर पक्ष को वायु के समान वेग वाली 7,000 घोड़े, 200 हाथी तथा बहुत सा धन दिया। साथ ही राजपाट, सेना, खजाने सहित सबको समर्पित किया। विवाह संपन्न होने पर युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के कृष्ण से भेंट में मिले हुए धन को धन से बहुत ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। हजारों गायें, रत्न, वस्त्र, आभूषण, बिछौने, वाहन, खाने पीने की उत्तम वस्तुएं अर्पित की। उस महोत्सव के समय हजारों लाखों हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ मत्स्य नरेश का यह नगर बड़ा ही शोभायमान हो रहा था।